نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وأصحابه وبارك وسلم أما بعد آج کی دنیا میں ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب وہ کام کرتے ہیں انشورنس کون ایسا شخص ہے جو اس لفظ کو نہ جانتا ہو یا اس کے کام کو نہ جانتا ہو انشورنس کچھ بھی نہ ہو گاڑی تو ہوتی ہے نا انسان کے پاس گھر میں کسی کسی نہ کسی انسان کے پاس تو گاڑی ہے ہی نا تو اس کے لیے لازم ہے آپ انشورنس کرائیں گاڑی کی انشورنس ہے مکان کی انشورنس ہے لائف کی انشورنس بھی لوگ کراتے ہیں بزنس کی انشورنس بھی ہے نہ جانے کس کس چیز کی انشورنس ہے تو انشورنس میں جب انسان کراتا ہے تو اس میں کچھ چند چیزیں ہیں جو ہم ڈیل کرتے ہیں انشورنس سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کمپنی کون سی ہے ظاہر میں نے کار کی انشورنس کرانی ہے تو میں کمپنی دیکھوں گا بھائی کون سی اچھی کمپنی ہے بیسٹ کمپنی تلاش کریں دوسری چیز یہ دیکھیں کہ بھائی جو کون سا اچھا ایجنٹ ہوگا جس کے پاس جائے ہمارے اچھے طریقے سے ڈیل کرے ہمارے انشورنس کو بتایا ہمیں سارا کچھ سمجھائے یہ بھی کی نظر میں انسان کے ہوتے تیسری چیز انشورنس کراتے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی پالیسی کیا ہے اس کی کیا کچھ دے گا ہمیں فائر یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے نا مکان کی چھت ڈوب گئی ٹوٹ گئی تو پانی ٹپکے گا تو یہ ہوگا کوئی ایکسٹرا ہم یہ بھی دیں گے یہ بھی پالیسی میں انسان دیکھتا ہے کہتے ہوں گے نا اپنے انشورنس مجھ سے زیادہ واقعی پتہ ہی ہوگا آپ کو اور پھر اصل چیز بھی دیکھتا ہے آدمی سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پریمیم اس کا کیا ہوگا یہ جو پے کرنا پڑتا ہے اسے پریمیم کہتے ہیں اس پہ بھی آدمی پھر کنسیڈر کرتا ہے کہ یار چاروں چیزوں کو پھر رکھ کے پھر اس مقابلہ کرتا ہے ساری کمپنیز کا ایسے ہی ہے کہ بھائی کون سی کمپنی جو میں جس سے سلیکٹ کروں آخر ایسا ہوتا ہے پھر اس کو جو کمپنی پسند آ جاتی ہے ان شاید کے ساتھ وہ اس کمپنی میں انشور ہو جاتا ہے اب جب کوئی خدا نخواستہ موقع پڑتا ہے ایسا آ جاتا ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے بھائی انشورنس کمپنی کتنا کام کر رہی ہے کتنا سچ بولا کتنا سچ بولا کتنا جھوٹ بولا کیا یا نہیں کیا اس وقت نتیجے میں پتہ لگتا ہے سمجھ آ گئی بات انشورنس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایک انشورنس پیش کرتے ہیں قرآن بڑھ کے قرآن پیش کرتے ہیں اور شاید ان تمام انشورنس سے زیادہ انشورنس ہے جو ہر انسان کو چاہیے بہت ضروری انشورنس ہے غور سے سن لیں اس لیے اللہ پاک نے اس کا حکم فرمایا قرآن کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انشورنس کے بارے میں ہم کلائنٹ ہیں نا اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تو اتنے انشورنس لائف انشورنس وغیرہ تم کراتے ہو تو ایک میری کمپنی بھی ہے اس کمپنی پہ کرا لیں دیکھیں تو چاہیے نا چلو دیکھتے ہیں پر اس کمپنی کا نام کیا ہے सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं इंश्योरेंस में, क्या देखते हैं नाम? ये बताया था ना कौन सी है ये, मतलब बहुत सी कंपनी में नाम देखते आते हैं कौन सी चीज़। तब इसका नाम क्या है? इसका नाम है इस्लाम। इस कंपनी क्या नाम है? इस्लाम, जिसका मतलब बहुत खूबसूरत है, अमन पीस जो इसमें आ जाए तो माशाल्लाह इंश्योर हो गया। बाकी क्या चीज़ें इसमें अल्लाह ताला भी इसमें बाकी चीज़ें बताते हैं। लकद जात रसूल रब्बिना बिल हक, पॉलिसी डिक्लेयर की अल्लाह पाक ने कि भाई जो इंश्योरेंस चीज़ें देखी जाती हैं तो इस इंश्योरेंस का नाम तो है कंपनी का इस्लाम, इसका एजेंट कौन है? अल्लाह कहते हैं रसूलुल्लाह। आया कहाँ से? लकद जाओ कंपनी की तरफ से आया हुआ है, मुस्तनद कंपनी से आया है, सही है ना? कुरान कहता है लकद जा रसूल, मुस्तनद कंपनी की तरफ से आ रहा है, कंपनी के नाम इस्लाम है और एजेंट का नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या आप क्लाइंट हैं, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, कुरान पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आपसे फैसला लूँगा कि इंश्योर्ड होना या नहीं होना, ये आपकी मर्जी है। पॉलिसी तो पेश कर दूँगा आपके सामने, फजूल वक्त थोड़ी ज़ाया करना है, आप मर्जी करना शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद में मिल जाए तो किससे बड़ी क्या चीज़ है। सोचना तो सोच के निकल नहीं ये बात। तो भाई कंपनी का नाम क्या है? इस्लाम। लकद जात आया कहाँ से है? अल्लाह की तरफ से। एजेंट क्या है? रसूलुल्लाह, ठीक है। और कंपनी का मालिक कौन है? रब्बीना, अल्लाह ताला कहता है मैं मालिक हूँ इसका, सुभानअल्लाह। कंपनी का मालिक अल्लाह, कंपनी का नाम इस्लाम और कंपनी का एजेंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, यही हमें चाहिए थी ना, कितनी मुस्तनद कंपनी है, बड़ी चीज़ है जी। फिर क्या गारंटी जी कंपनी बहुत पूछते हैं, गारंटी क्या है इसकी कोई कि हमारे क्लेम जो होंगे सही मंजूर होंगे या सही भी है पुरानी भी है किस किस्म की है? अल्लाह कहता है लकद जाक लकद जात रसूल रब्बिना बिल हक मुस्तनद मोहर, अल्लाह ताला कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता तुम्हारा कोई क्लेम जो रिजेक्ट हो, बिल्कुल वही मिलेगा जो हम पॉलिसी देंगे। अल्लाह अकबर, कैसी जबरदस्त पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? नूदू का कुरान कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल से पहले फारान की चोटी पे खड़े होकर इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया था। नूदू आवाज़ मारी थी, एजेंट थे ना, आवाज़ मारी थी उस कंपनी के बारे में क्या था। अभी हदीस सुन, अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत फरमाते हैं इस हदीस को, अब पॉलिसी डिक्लेयर हो रही है, हमें ये चाहिए ना इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं किसी कंपनी में, सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, क्या जी पॉलिसी में क्या क्या मिलेगा हमें, हम इंश्योर हो जाए इसमें? तो एजेंट ही बता सकता है ना, तो कुरान कहता है मेरा एजेंट बताता है तुम्हें। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई अल्लाह अकबर कि सेहत सेहत हो और बीमारी कभी नहीं होगी, ये पॉलिसी है। क्या होगा? सेहत ही सेहत होगी, बीमारी कभी नहीं होगी, जवानी जवानी होगी, बुढ़ापा कभी नहीं होगा, नेमतें नेमतें होंगी, कभी भी खस्ता हाली नहीं होगी। तीन पॉलिसी बताई हैं इन्होंने। इसके बाद बाकी कोई चीज़ आ जाती है, हर चीज़ को इंश्योर कर लिया, ज़िंदगी को, मौत को, तकलीफ़ों को, सब चीज़ को, ये पॉलिसी है इस कंपनी की। कैसी कंपनी है? पसंद आ रही है अभी? हैं, हो रहा है इंश्योर? देखिए नू दो आवाज़ मारी अल्लाह के नबी ने इस कंपनी पर, आओ इन तलकुम जन्ना उस तो हूँ, कहते ऐसी पॉलिसी है ये, सब कुछ मिलेगा और क्या है इससे भी बजीर चीज मिलेगी, इनकुन तुम जन्ना बिल जन्ना, कि जन्नत ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर फरमाएगा ऐसी इस पॉलिसी का ये इनाम है सबसे बड़ा, उर्स तुम बिहा कि तुम्हें उसका वारिस बना दिया जाएगा। सुभानअल्लाह, कैसी बेहतरीन पॉलिसी है, वारिस हो जाएगा जिसने ये पॉलिसी खरीद ली, वो क्या है? वर्ल्ड स्पिरिट जन्ना होगा उसमें सब कुछ। विरासत तो बहुत बड़ी चीज़ है, विरासत उसको कहते हैं कि जो कभी छीनी ना जाए, वारिस ना आप उसके। एक तो होते ना बेटे एंटे सब कुछ, मैं तो वारिस हूँ जी, मुझसे आप कैसे ले सकते, इतनी जबरदस्त चीज़ है, मुस्तद चीज़ दी जाएगी। फरमाया तो कोई आप पता चल गया हमें अल्हम्दुलिल्लाह कि कितनी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है इस्लाम, और कैसी कैसी इसके अंदर चीज़ें मिल रही हैं हमें, और किसी किस्म का शुकिन शक है ही नहीं, क्योंकि इंचार्ज जो है इसका कौन है, अल्लाह सुबहान ताला है, अभी से गारंटी दे रहे हैं। अब एक चीज़ आ जाती है प्रीमियर, कि पे क्या करें, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी से पूछते हैं, या अल्लाह ये सब कुछ तो हम खरीदें, हम तो भूखे नंगे आदमी हैं, कितने पैसे चाहिए इसके लिए, दौलत क्या दें, यही है ना। अब पैसे भी जिस किसी भी आप इंश्योरेंस में जाएँ तो उसको प्रीमियम देना पड़ता है ना, 500 मांग रहा है, कोई 400 मांग रहा है, तो अल्लाह ताला भी बता रहे हैं इसका प्रीमियम देना पड़ेगा जो इंश्योरेंस में, वो क्या है, बीमा कुम तुम तामलून, अल्लाह ताला कहते हैं कि इसका इंश्योरेंस क्या है, अच्छे अमल पेश करो, इसका ये जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम है कि जो अच्छे अमल पैदा करेगा वो इसका प्रीमियम पे कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ जब वो इंश्योर हो जाएगा, पेमेंट आती रही बाकायदा, रुकेगी नहीं, अमल बाकायदा आ रहे हैं, ऐसे होते हैं ना पॉलिसी में अगर रुक जाए पेमेंट तो कैंसिल कर देते हैं ना पॉलिसी, तो शर्त ये है बीमा कुम तुम तामलून, अपने अमालों को भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, अमाल नहीं रुकने तुम्हें चाहिए। तो जब ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इंश्योर हो जाएगा आदमी अल्लाह के फजल से, तो अल्लाह का वादा है अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने वादा किया तुम्हें अदा कर दिया जाएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आवाज़ मारी और ये पॉलिसी पेश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल के तौर पर कुरान मिसालें देते हैं आपको कि जो लोग इंश्योर्ड हुए इस वक्त, अब देख रहे हैं आप जानते हैं वो क्या लोग थे, क्या क्या नाम मिला उनको, क्या दर्जा मिला, और जो रद्द हो गए, जो डर गए, जो निकले तो बड़ा मुश्किल काम है, हम नहीं कर सकेंगे, तो उनका हाल क्या हुआ, और उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपना जो है प्रीमियम पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्रीमियम पेश किया कि दुनिया रहती दुनिया तक उस प्रीमियम को देखेगी कि कैसे पेश किया, जिन्होंने इस पॉलिसी को खरीदा वो सदीक थे, बलाल थे, हबाब थे, यही लोग थे ना, कैसे पे किए उन्होंने प्रीमियम, आप देखें आग पे लेटे हुए हैं, पत्थरों पे लेटे हुए हैं, गर्म रेतों पे लेटे हुए हैं, घरों को छोड़ रहे हैं, तीर खा रहे हैं, जख्म लगे हुए हैं, हाथ कट रहे हैं, जिस्म पे बिनतहा तलवारों के निशान लग रहे हैं, घरों को छोड़ रहे हैं, लेकिन प्रीमियम भेजते रहे, प्रीमियम भेजते रहे, एक दिन भी उन्होंने नागा नहीं की, हर चीज़ कबूल की। हमारा तो इतना आसान काम है, मुझे बताएं, हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, हम अगर इतना काम करें, 5 वक्त नमाजी पढ़ लें मस्जिद में आके, इंश्योर होंगे तो 5 वक्त, मतलब प्रीमियम तो वो होगा ना जो जो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए, या नहीं, वो कहिए हम आपको जो कोई कंपनी कहती है ठीक है हमने आपको इंश्योर कर लिया, अब आपने ये करना है कि जो पैसे हैं आपने आके इस बैंक में जमा कराने हैं, ठीक, आप कहें जी ठीक है जमा कराने, लेकिन आप क्या उसके आप नज़दीक दूसरा बैंक है आप उसमें जमा किए जा रहे हैं, तो आप नोटिस आ गया जी आपका नाम कट गया कंपनी से, आप कहें क्यों कि जी आपने पैसे नहीं दिए, मैं तो करता रहूँ किस बैंक में, इसमें हमारी पॉलिसी इस बैंक की थी, आप उधर की हमें क्या पता, यही है ना। तो अल्लाह सुबहान ताला जो अमाल जिस तरीके से कहेगा वही प्रीमियम बनेगा ना। अल्लाह ने कहा मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, जमात के साथ नमाज पढ़ो, और मैं घर खींच रहा हूँ नमाज, नमाज तो होगी जी मेरी, प्रीमियम चला गया आपका, नहीं गया, पॉलिसी आपकी कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म, फिर वहाँ क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो शर्त इसकी यही है कि अगर ये पॉलिसी हमने खरीदनी है तो वो तो कुछ नहीं जिसकी मिसालें मैंने आपको दी हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, इस पॉलिसी को प्रीमियम भेजने के लिए जो उन्होंने जिस तरीके से प्रीमियम भेजे आप, वो तो तारीख बताती है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी तो मिसालें कोई नहीं मिलती। हमारा तो बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, निगाहों को बचा लें। देखें अमल दो किस्म के हैं, हम इसी को अमल समझते हैं कि भाई नमाज पढ़ ली तलावत कर लिया, उमरा कर लिया, हज कर लिया, जिक्र कर लिया, अमल है ना ये, लेकिन इससे भी बड़ा एक अमल है, उसको अमल नहीं समझते। झूठ ना बोलना, फ्रॉड ना करना, किसी पे जुल्म ना करना, घर वालों को हकूक देना, बच्चों की सही तरबियत करना, अपने पड़ोसियों के हकूक अदा करना, कोई आपके साथ गाली दे तो आपसे प्यार से बात करना, अखलाक को शो करना, अपनी कुर्बानी दे के दूसरे को खुश करना, ये अमल नहीं है? ये तो हम कमाल करते हैं कि मस्जिद में आके नमाज पढ़ने को तो हम बड़ा अमल समझते हैं, लेकिन ये जो अमल है इनको हम अमल नहीं समझते। हकीकत ये है कि ये अमल उससे बड़ा है, आखिरत के हिसाब से नमाज से बड़ा अमल वो है झूठ, झूठ को छोड़ देना। बिल्कुल सही है, आप तो तजुर्बे करते होंगे, एक गुनाह को छोड़ने के लिए मेरा ख्याल तो 30 साल तो हो गए, 25 साल इंसान से गुनाह नहीं छूट रहा हो। कोशिश की जा रही है कि निगाहों को बचाऊं, झूठ से बचूं, गीबत से बचूं। देख लें आप, अलहमदुल्ला जिक्र फर्स्ट क्लास है, नमाजें पूरी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत भी हो रही है, बाकी सारे सुन्नत भी चल रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं छूट रही, उससे गीबत नहीं छूट रही। देखिए आप, उससे झूठ नहीं छूट रहा, उससे जो ये जो मामला है इसको हम छोटा समझते हैं, बताएं वो छूट ही नहीं रहा उससे। आप तो तजुर्बा करते हैं ना, मैं भी करता हूँ तजुर्बा, इस चीज़ पर लिखते रहते हैं ना, यानी लिखते रहते हैं तो वो बिल्कुल साइड बिल्कुल चलती है। नमाज रोज़ा पूरे रखेंगे, नमाज भी की होगी और जनाब तलावत भी कर ली होगी, जिक्र भी कर लिया होगा, लेकिन ये जो घर में हमारी लड़ाई है, जो हम किसी के हक को खाए बैठे, किसी को माल खाए बैठे, किसी के दिल में रंजिश लिए बैठे, अंदाजा लगे। इस रंजिश को छोड़ देना तो ऐसा है कि मैं कहता हूँ हजारों तहज्जुद से बेहतर है। कितने बड़े बड़े महराब हम लगा लें, लेकिन किसी के अगर दिल के अंदर हमारे एक बोझ होगा, वो तो इंसान ही नहीं है, यानी किसी दर्जे का बुजुर्ग तरह वो इंसान ही नहीं हो सकता। और मोमिन की शान ही नहीं है कि किस ऐसे वो एक रात ऐसी गुजारे कि उसके सीने में किसी का बोझ हो, उसको तो ऐसा पाक साफ हो के इस्तग़फ़ार करके दुआ मांग के, और जिन पे शक हो कि मेरा यार इससे बोझ है, इससे मेरे रंजिश है, तो उसके लिए ये इलाज है कि सोने से पहले बाकायदा एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लें, और पढ़ के उस इस्तग़फ़ार के सवाब जिस पे शक है कि यार वो मुझसे नाराज़ है, या मैंने इसको ज्यादती की, या मेरे मुँह से कोई बुरा लफ्ज़ निकल गया, उसको बख्श दे ये सवाब, बिल्कुल साफ सुथरा करके जाए, क्योंकि हम मौत की तरफ जा रहे हैं। नींद मौत है, नारायण उठे अल्लाह का फजल दे तो वो उठाएगा, नहीं उठा तो रूह तो चली गई है हमारी। तो इतना हिसाब बराबर करके जाए, क्यों कि देखें नमाज अल्लाह की है और ये हकों के लिबाद है, ये इंसानों की है। अगर नमाज में कोताही होगी हमारे से तो अल्लाह रहम फरमा दें, उसकी मर्जी है, कहते हैं मेरा अमल है। लेकिन उस वक्त जो सीने के अंदर जो एक हम फेल लेकर जा रहे हैं, या किसी के खिलाफ रंजिश लेके जा रहे हैं, या किसी को बुरा कहा हमने अपनी जबान से, दोस्त को कहा, घर में कहा, या किसी ऐसे आदमी को कहा, तो वो तो चिपक गया, वो तो वहाँ फैसला वहीं होगा उसका। अल्लाह ताला कहे कि मैं कुछ नहीं कहता, इसका फैसला उसी से कर जिसका तूने किया था। तो उसको खत्म कर देना कि वो तो इन इबादत, हालांकि ये फ़राइज़ वो भी फर्ज है, ठीक है ना। तो सूफिया हज़रात जो हैं वो इस तरफ ज्यादा जोर लगाते हैं, अखलाक की तरफ जोर उनका होता है, इस इबादत की तरफ वो तो डंडे वाली इबादत है, वो तो नमाज पढ़नी ही पढ़नी है। ये कोई कमाल नहीं कि हमने 5 वक्त नमाज पढ़ ली, हमने रोजे पूरे कर लिए, हमने हज पूरे कर लिए, वो तो करने ही करने हैं, वो तो ईमान का एक हिस्सा है। जैसे रात को सोने सोने हैं, खाना खाना, इस पर क्या 3 मार लिए, 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, और कोई 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है हम उसको कहते हैं ये वली अल्लाह है, ये तो बहुत ऊंचा इंसान है, बड़ा नमाजी, बड़ा नेक साफ, इतनी उसकी तारीफें करते हैं। नहीं, हकीकत ये है, आप ये देखें कि अगर किसी का पड़ोसी उससे खुश है, गारंटी दे दो अल्लाह ताला से राजी है। इतना हक है एक पड़ोसी को, आप ये देखिए, एक घर, अब हम घर में रहते, एक बीवी गारंटी दे दे कि मैं शौहर से राजी हूं, अल्लाह अल्लाह के नबी गारंटी दे रहे हैं कि मैं तुझे गारंटी देता हूं तू जन्नत में चला जाएगा। ये क्यों कि तेरा अखलाक अच्छा होगा, माफी अच्छी होगी। इसी तरह एक मर्द गवाही देते अपनी बीवी की, आप देखें कि मैं इस बीवी से राजी हूं, मैं खुश हूं, घंटी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत की सौरत को, दुनिया में घंटी मिलती है ना, उसने कोई बाहर की इबादत की, सारी इबादत उसकी चार दीवारी के अंदर रही ना। हम तो जनाब जुम्मे पे जाना पड़ता है, ईदेन पे जाना पड़ता है, हजारों हमारे तो काम है जो बाल करते हैं, औरत के लिए कुछ भी नहीं काम, सिर्फ एक काम है, एक काम दिया कि तू घर में रह के अपने खामिद को राजी कर ले, बस किस तरह तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा। हाँ जायज चीनो, ये नहीं कि खामिद उससे गलत मुतालबात करे जो शरी हदूद से बाहर है, वो तो गलत है, वो तो हराम है, जो उसके हदूद के अंदर नहीं है बीवी के, जो उसके राइट्स में नहीं है, आप खामिद उससे वो मुतालबा करे ये भी तू कर फलम जी कर, तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हदूद शरिया के अंदर कानून अल्लाह ने मुझे हकूक दिए हैं उसकी बात कर, जो मुझ पर हकूक लाजमी होते हैं, ये नहीं कि बांदी बनेंगे, ये इस्लाम का एक आप वालू जो है नोट कर लें, बाज़ लोग ये कहते हैं ना बस तू तो मैं तेरा खामिद हूँ, तू बनाया मैं तो, तू जो मैं चाहे तुझसे कराऊँ, हर चीज़ खामिद कर सकता है, और बड़े बड़े हवाले और यू देते हैं, खबरदार अच्छी बात नहीं है। इतने राइट्स नहीं है औरत को, पता है आपको कितने राइट हैं औरत के खामिद पर, बे इंतहा। एक ही बात बता दो, नुकसान तो मुझे भी होगा, बीवी का ये हक नहीं है कि वो आपको खाना बना कर दे, शायद मेरी बीवी ना सुन रही है इस वक्त किसी बीवी का हक नहीं है कि आप खड़े कुछ कहें मुझे खाना बना कर दे, ये उसके हक में नहीं है, उसकी मर्जी बना कर दे या ना दे, ये कानून अल्लाह, देखें कितनी बड़ी साइड दी है। हम सबसे ज्यादा हमारे घर में लड़ाई इस बात की होती है, मैं आया तो खाना गर्म क्यों नहीं था, आज नमक तेज क्यों था, आज ये क्यों नहीं पकाया, आज फड़ा ये क्यों नहीं, यही है ना वजह, ये कि हम इंश्योरेंस ही गलत है हमारी, अगर वाकई इंश्योर्ड होना है आपने इस दीन के साथ तो सही प्रीमियम देना देना पड़ेगा अल्लाह ताला को, याद रखें, वरना तो बहुत बड़ा अजाब है, मतलब फिर तो इस्लाम नाम ही नहीं हो गया तो हमारी कंपनी में नहीं, अल्लाह ताला कहेगा तुम तो इंश्योर्ड हुए ही नहीं इस कंपनी से। तो पूरी आयत पढ़ी मैंने आप सामने, कुरान जो बता रहे हैं, ये कोई गलत बात तो नहीं, पूरी पॉलिसी अल्लाह पाक ने डिक्लेयर की है कि मैं तो भेजे नबी पाक को ऐलान किया उन्होंने इस चीज़ का कि तुम अमल में तब भेजते हो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, तुम्हें विरासत मिलती है जन्नत की। तो भाई ये अमल कौन से हमारे, हम इस पर खुश हो जाए हम नमाज पढ़ ली या हमने जनाब फला काम कर लिया, अपनी मर्जी की इबादत नहीं है, मर्जी क्या है किसकी चलती है, प्रीमियम तो वैसे चलेगा जो कंपनी मुकर्रर करेगी, आप फला बैंक में जाना पड़ेगा, लगता ने क्या भी ठीक है तुम्हें हज पे जाना पड़ेगा तो हज पे वहीं जाना पड़ेगा, कहा इधर में जिंदगी में एक दफा जाना पड़ेगा तो एक ही दफा जाना पड़ेगा, 30 सौदे किए हैं तो आप उसको 35 नहीं कर सकते, वो 30 ही रहेंगे, न कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते, जो टाइम मुकर्रर किया सुबह और शाम का लाने उसी के दरमियान आप रोजा रख सकते हैं, ये प्रीमियम अल्लाह ताला का उसके, ये उसने बताया कि भाई मुझे प्रीमियम भेजना है तो मेरे असूलों के मुताबिक भेजिए, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, इसमें झोल नहीं पड़ेगी, जो नहीं भेजेगा वो प्रीमियम कैंसिल कर दिया जाएगा, और जब नहीं आएगा उस कंपनी से उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। दोनों चीज देखने वाली है मेरे भाई, अगर हम इंश्योरेंस होना चाहते हैं सही अल्हम्दुलिल्लाह, आज ही फॉर्म फिल कर दें अल्लाह के फजल से, पक्का फॉर्म मस्जिद में बैठ के कि अल्लाह ताला हमें इंश्योर कर, हमने तेरे एजेंट को पसंद किया, बहुत ही प्यारा तेरा एजेंट है माशाल्लाह, ऐसा प्यारा एजेंट कहीं सोच सकता है कि तेरी कंपनी, और तेरी कंपनी का नाम ही कितना प्यारा है इस्लाम, और मालिक कितना सोना है रब सुभानअल्लाह, तो तेरा तो इंट्रोडक्शन ही ऐसा है कि कोई आदमी कैसे ना इंश्योर हो, बाकी रह गया जनाब किस चीज़ का बीमा तामल अमल, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इंसान है, जान दी है, ताकत दी है, क्या फर्क पड़ता है, मस्जिद हर जगह मस्जिद बनी है, हम वादा करते हैं इंशाल्लाह जो शरी हदूद में उसमें जाकर हम आप तेरे जो है मस्जिदों का मस्जिदों में आबाद जाकर नमाज पढ़ेंगे, और जो हम पे हकूक लागू हैं हम उसको जानेंगे, इसी का नाम देखें जो चीज़ फ़र्ज अमल है उसको जानना चाहिए कि हम पे क्या क्या हक है, मतलब पोजिशन इंसान की बदलती है, मेरी शादी नहीं हुई मिसाल दे रहा हूँ तो मेरी पोजिशन और है, उस हक को जानू मैं, मेरा अब मुझ पर क्या हक है, किन किन का हक है, मैं शादीशुदा तो नहीं है, वो हक दूसरे है, मैं किसी जॉब करता हूँ मुझे अपनी पोजीशन को देखना चाहिए कि मैं यहाँ पर काम इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस जगह काम कर रहा हूँ या मदरसे में काम कर रहा हूँ तो मुझ पर क्या हक लागू होता है, ये कोई खुली किताब नहीं है इंश्योरेंस का जो मामला है पढ़ाते, अब मुझ पर क्या हक लागू है इस जगह का, मिसाल मस्जिद में हूँ, अब मस्जिद पर मुझ पर क्या हक लागू होता है, उस हकूक को अदा करना पड़ेगा, जिस जगह होंगे आपने किसी दोस्ती की है आप पर उसका हक लागू होगा कि इसके साथ अमरीज दोस्ती होगी है, अब मेरे इसके क्या हक है, इसका मुझ पर क्या हक है, आप किसी शेख से बैत होते हैं तो आप पे हक लागू हो गया कि अब मेरा इस पर क्या हक है और मेरे शेख का मुझ पर क्या हक है, रोज़े क़यामत में इन्हीं हकूक को पूछा जाएगा, हर लम्हे हमारी पोजिशन बदलती है, और जैसी हमारी शादी होगी तो आप हमारे एक जिंदगी बदलेगी, अब क्या हो गया बीवी का हक मुझ पर कितना है और मेरा बीवी पर कितना है, साल के बाद रोने की आवाज आने लगी बच्चे की, अब क्या इस पे हक हो गया, बच्चे का मुझ पे कितना है और मुझ पर बच्चे का कितना हक है, फिर हम दोनों का हक कितना है, फिर हम इसकी तरबियत कैसे करेंगे। जैसे जैसे इंसान की स्टेज बदलती जाती है, जैसे इस कंपनी में आप गए, पता चलेगा इस कंपनी का कानून क्या है, इस पर मुझ पर क्या हक बनता है कि मैं इसके लिए क्या काम करूं और किस वक्त करूं, जो ये चाहेंगे आप वैसे काम करेंगे। कंपनी के साथ साथ आपका मामला बनता जाएगा। जिससे और जॉब कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं और वहां पर और हक है, टैक्सी चला रहे हैं वहां पर हकूक बताएंगे आप, पैसेंजर का क्या हक है, तिजारत कर रहे हैं वहां पर उसके हकूक होंगे। हम अंधाधुन चलते रहते हैं कि बस जैसे हमारा तो एक बेजब्त घोड़ा है, बस अंधाधुन जो मरचाए करते रहो, ऐसा नहीं। जिंदगी इस्लाम इसका नाम नहीं है, इतना सहल ना समझें ऐसी इसका नाम, इससे कुछ नहीं मिलना। बस ये मैं तो जिक्र करता हूँ, 1,00,000 जिक्र कर लेता हूँ, बस बड़ा खुश हूँ, बड़ा मजा आता है जी, हम समझें हम इससे कामयाब हो गए। बाकी हकूक आपको इतना भी हक है कि आप किसी गोश्त की दुकान पर जब सब्जी लेने जा रहे हैं गोश्त, तो उस वक्त भी आपका हक उस पर क्या है और उसका हक आप पर क्या है। सबसे बड़ा हक क्या होगा जब आप जब एक दुकान में दाखिल होंगे, सबसे बड़ा क्या हक है आपका जो उसको अदा करेंगे। इस्लाम क्या कहता है बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू, है या नहीं हक? अल्हम्दुलिल्लाह हक अदा कर दिया आपने। जैसे आपने हक अदा किया, अल्लाह की रहमत उतरना शुरू हो गई आप पर, औरों को गंदा सौदा देगा आपको बेहतरीन सौदा मिलेगा इंशाअल्लाह। और आप तजुर्बा कर लें, किसी दुकानदार से जाके जब इस तरह इंट्रोडक्शन करेंगे इस्लाम के तरीके पर, उसका दिल एकदम रहोगा, आपको गौर से देखेगा वाकई कोई नेक, उस पर एकदम असर पहुंचेगा। वो फोन गया, वालेकुम अस्सलाम हजरत, क्या हाल है शेख साहब, क्या हाल है फला साहब, क्या हाल है? आएगा जवाब नहीं आएगा, आपसे ओए कट दें सब्जी कट दे, बिल्कुल ये बताएं, ये इस्लाम का तरीका है। हम अपना बड़ा समझते हैं इस तरह की बात करना चीजें, क्योंकि जी हम तो गाड़ी रोक के ट्रूम करके बड़ी गाड़ी रोक के अंदर गए, भाई इतना हमें बना देते हैं चाहिए जल्दी, हमें जाना है, बस टाइम है, फिर टेलीफोन निकालो, हाँ हाँ बस बनने वाला है, हाँ जी बस यार जल्दी करो, क्या कर रहे हो? इस दिस वे इस्लाम नहीं। वैसे जब देखो तो बस बड़ा मुतबर हो, बस कि बस जी मैं जा रहे हैं हंसते जान लो, जी सीट बुक हो गई मेरी तो मैं उम्र जान लगे हैं। कौन सा उम्र आ गया सर? तू एक ही चीज नहीं अदा कर रहा हूँ उम्र में जाके, तू क्या करेगा? ये कौन सा ही दीन है मुझे समझ नहीं आता। ये वो दीन नहीं जिसके लिए अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने कहा जात रसूल तब भी ना, जो मैंने जो भेजी थी पॉलिसी, ये तो इसमें से कोई पॉलिसी कोई हकीद को दा नहीं कर रहा, सही कह रहा ना गलत कर? तो आज इंश्योर भाई सही हो जाओ। पहली चीज तो देखना है कि जो हमने अपने हर चीज जो हमारी है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज के, याद रखें रिस्पॉन्सिबल है। हम इस मस्जिद में आए, अंधाधुन नहीं आ गए, अब इस मस्जिद के हकूक हमारे पे आ गए मुकम्मल तौर पर, कि कैसे बैठे हैं, क्या हक अदा करना है, किस तरह दाखिल हों, किस तरह आती जब मुसलमान आता है किसी मस्जिद में, सबसे पहले मस्जिद का क्या हक बताया कि तू अल्लाह के घर में आया और तो एहतियात करनी चाहिए, और देख आते तू क्या कर, फौरन दो रकात पढ़ो तहतुल मस्जिद की, कि शुक्र है मेरे मौला तुमने अपने घर में हमें इजाज़त दी, क्योंकि ये तो करोड़ों महिला से और बड़े बड़े जितने भी दुनिया के बादशाहों को एक जगह जमा कर दें, इसी मस्जिद का क्या मुकाबला इस घर का। एक आपको ऑफिसर बुला ले, कोई बड़ा आदमी बुला ले, कोई बादशाह बुला ले, तो कितना आसान मानते हैं, ये बादशाहों का बादशाह अपने घर में बुला रहे हैं। आपका हक बनता है इस मस्जिद पर आते ही दो रकात नफिल अदा करें तहतुल मस्जिद की, हक है उसका। आए उसका दूसरा हक मस्जिद का क्या है, खबरदार समझे हम दुनिया से बाहर हो गए, आप किसी दुनिया की बात नहीं करनी, हाँ जी बिजनेस तनख कान लगा के अस्तग़फिरुल्लाह, क्या हाल हो तुम लोगों को मुझे बताए, भूल जाए बंद हो जाए रिंग से दुनिया से बिल्कुल फारिग हो, अभी हम नमाज पे नहीं है, बिल्कुल तसव्वुर भी ना हो किसी किस्म का दुनिया ख्याल आता, ख्याल भी ना हो, ये नहीं साथ है, तेरा की काम है तू की कम करना है, अच्छा मैं भी ये करना, चल बाहर जा मेरे दो जूते बेच दे पैर मेरा का मस्जिद तो मैं यहाँ बैठे ना साथ, तेरा काम चल रहा है, चल रहा है मैं बता दूँ तेरी पॉलिसी क्या है, वहीं बैठे बैठे कारोबार शुरू हो जाता है, ये पॉलिसी नहीं है हमारे इस्लाम की पॉलिसी नहीं है। इसका हक ये है कि खामोशी, अल्लाह का खौफ, जिक्र अल्लाह, मराकबा, ध्यान, ज्ञान, खौफ, मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार, तलावत कुरान, ज़बान झुकी हो, दिल झुका हो, ऐसे हो कि जिस वक्त आप मस्जिद से निकलें तो पता चले किसी दुनिया से आए हैं आप, तब्दीली यानी ऐसा होना चाहिए। देखें आप जैसे बहुत से गर्मी पड़ी हुई है सऊदी अरब में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, आप अंदर जो है एसी चल रहा है बहुत सा गर्मी, जैसे आप अंदर आते हैं एकदम ठंड मिलती है आपको, मिलती है ना, बड़ा सुकून आता है या ठंडा सांस लेता है, बस बड़ा आदमी रिलैक्स होता है। तो ये घर ऐसी ही चीज़ है कि जिस वक्त हम दुनिया को छोड़ के यहाँ आए तो हमारी रूह को महसूस होना चाहिए कि हम किसी और जगह आ गए, फील इट। अगर यहां डिफरेंस ही नहीं फील करे कि ये और वो एक ही जगह है, यहां भी दुनिया है, यहां भी टेलीफोन है, यहां भी वही बातें हैं, यहां भी वही बातें हैं, फिक्र ये टेलीफोन शायद साथ में रखा है और दुआ मांगे जा रहे हैं, देखें कॉल तो नहीं आ गई, कोई फला तो नहीं आ गई, किसी के बिजनेस तो नहीं आ गया, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कितनी जिंदगी जाया कर रहे हैं दोस्तों, हम मुझे बताएं कितनी जिंदगी जाया कर रहे हैं। खराब है, अपने शेख के पास गए आप, आपको अगर ये यकीन, शेख तो जब भी बनाएंगे जब आपको यकीन होगा, बेशक वो हो ना हो वो दूसरी बात है, वो अल्लाह जाने वो जाने, लेकिन आपका यकीन जब तक उस इंसान से इतना पक्का नहीं होगा कि अल्लाह का पक्का दोस्त है, उससे मुझे हिदायत मिलनी है, इसने मुझे हिदायत दिखानी है, इसने मुझे अल्लाह से मिलाना है, अल्लाह का कुर्ब इससे मिलना है, जो चीज भी गाइडेंस आएगी शरीयत के मुताबिक देगा, पूरा ईमान यकीन अकायद जब तक उस इंसान के साथ नहीं होंगे, आपका शेख कहां से हो जाएगा? जाहिर जब ये अकीदा हुआ आपका उस आदमी के साथ, वो आपका शेख हो गया, तो फिर तो आपको वैसे ही आना चाहिए कि जैसे सहाबा आते थे नबी पाक के पास, उधर से होना चाहिए, तभी तो हम फैजयाब होंगे खुदा की कसम इस अकीदे के साथ कि जैसे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते थे, उनका अकीदा था कि इससे बड़ा इंसान ही कोई नहीं है, ये जात वो है जो हमें अल्लाह से मिला देगी, इसका तो जुबान से निकला हुआ लफ्ज जो है वो हमारे लिए बड़ा कीमती है, वो कहे और हम माने, हमने ये नहीं देखा इसमें कितनी दुश्वारी है, ये कितनी रुकावट आएगी, नहीं, जबाने हमारी खिली नहीं और सहाबियों ने उसको किया नहीं। कहीं आप किसी हदीस में देखेंगे कि तामल हुआ हो, सोच हुआ हो, फिक्र हुई उस आदमी को, सहाबी को, या मैं करूं, मिसाल बड़ी एक ऊंची है आपके सामने, दो सहाबी कभी एक बैठता था कभी दूसरा बैठता था, एक सहाबी मजलिस रसूल से तशरीफ ले जा रहे हैं, सर के ऊपर गट्ठा रखा हुआ है, एक आ रहे हैं कभी आज क्या सुना, दूसरे आ रहे हैं लकड़ी सर पे रखी है, मैं जो मजलिस से जा रहे हैं सीधे जा रहे हैं, सलाम दुआ आज क्या सुना, आज मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ, नबी फरमाया कि जिसके टखने जो है वो नीचे होंगे शलवार के, तो उसके उसके टखनों को दोजख में डाला जाएगा, तो उन्होंने साहबी ने बेचारे पहने क्या होते थे उनकी लुंगी पहनी हुई थी, उन्हें कुर्ता सबिन था जिसम पे चादरी सी होती थी, उन्होंने फौरन लकड़ी का टखन उतारा नीचे रखा और अपने तहमत को खोला और फाड़ दिया। उन्होंने कही भाई अभी घर तो चले जाते तुम, कहते तुम्हें घर तक गारंटी है कि मुझे मौत आएगी, फरमाने रसूल मुझ तक पहुंच जाए, मुझ पर अमल ना करूं, सुभान ये है प्रेमियों जो देना होता था, सुभान अल्लाह, प्रेम यदि आग के अंदर जल रहे हैं, उस आग उनके खून से वो आग वो ठंडी हो रही है और पूछा बलाल अब बता क्या कहेगा, आहत अल्लाह एक है, सुभान अल्लाह। अच्छा ये बात है, लिपटा घसीटते ले गए पत्थरों के ऊपर बोल अब क्या कहेगा, क्या दे रहे हैं वो प्रेमीर दे रहे हैं, तलहा कोई जिस्म का निशान ऐसा नहीं था, सुभान अल्लाह, साथ क्या खूबसूरत बात है, बहुत ही महबूब साहबी थे, जंगे अहद का वाकया नजर नहीं है, उनके बाद नबी भाग क्या मेरा साथ कहाँ है, फिक्र रही साहबस का मेरे साथ को ढूंढो, क्या होगी साथ वो चीज़ मुझे बताएं, कुर्बान जाए इसमें हमारी जान है, कैसी चीज होगी वो साहबा का अभी क्या मोहब्बत थी आपस, अब ढूंढ रहे लोग नहीं हजर मिल नहीं रहा, कहता आवाज मारो उसको है कहाँ, साथ साथ दो आवाजें मार रहे हैं उसको, साथ साथ आवाज मार रहे हैं, एक भिनी सी आवाज है एक एक पहाड़ के कोने से, अल्लाह अल्लाह वो भागे जनाब साहब उसके पीछे की, यहाँ लगता है साथ के जख्मी चूर बिल्कुल पड़े जान के आखिर लबों पर, कहने के साथ तुम यहाँ पड़े हम नबी बख्श में तुम्हें तलाश कर रहे हैं, कहता हाँ मैं अभी इंतजार ही कर रहा था, तो चलो उसने कहा मैं तुम्हें जख्म धोता हूँ, तुम्हें मैं कुछ पानी का इंतजाम करता हूँ, कहता नहीं जल्दी करो मुझे नबी पाक के पास ले जाओ, मुझे उनके पास ले जाओ, उसके भी क्यों तो अभी तुम कुछ सब्र तो करो ठहर दो, क्या नहीं कहते मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस वक्त मेरा ये जो एम था मेरी जिंदगी का मकसद था कि मैं अल्लाह की राह में जा रहा हूँ और मैं जिस वक्त जा रहा हूँ तो चेहरे मुस्तफ़ा मेरी निगाह में हो, मैं मौत वहां देखना चाहता हूँ, मुझे यहां मरने ना देना, जल्दी करो प्लीज मुझे ले जाओ जिस तरह भी ले जाओ, मैं बहुत थोड़े सांस में रहे बस मेरा ये जिंदगी की ख्वाहिश पूरी है तो सब कुछ ले जाएगा, तो उधर क्या है ये आशिक महबूब की बात है, उधर वो बेकर आ रहे हैं कि साथ को बुलाओ, सुभान अल्लाह, ये हुई ना प्रीमियर देने वाली बात, यहाँ अजान हो रही है मस्जिद में और हम घर में बैठे सो रहे हैं क्यों जी, थके हैं जी नहीं, चलो जी यहीं पढ़ लेते हैं, चल जा तू जमात तू अजान दे जमात कर लेते हैं, सुभान कितनी शर्म की बात है, क्या स्टैंडर्ड दिया इस्लाम ने प्रीमियर को, इस तरह तुम्हें अदा करनी है चीजें, ये सहाबा की जिंदगी थी, ये हमारे सामने मिसालें हैं भाई, ये कहानी तो नहीं है, ये हम तक जो पहुंची है दुनिया के हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी कहानियां गायब हो गई हैं, लेकिन एक एक सहाबी की दास्तान, अब ये कौन वहां मौजूद था जो यहां तक साथ का किस्सा आ गया रज़ी अल्लाह तआला। इसलिए कि मिसाल कायम करनी थी कि तुम होश संभालना, इस्लाम को इतना सस्ता समझना, ये जो इंश्योरेंस है ये बहुत बड़ी इंश्योरेंस है। क्यों, क्या बताया जाएगा, तुल कौन जन्नत और सतुहा, कि तुम्हें तो जन्नत, ये जन्नत सुना है, इन ये जन्नत होगी, ये जन्नत और सतुहा, तुम वारिस हो जाओगे इन जन्नतों के। तो इन चीजों से तो नहीं ना मिलेगी भी जो हम इस तरीके से जिंदगी गुजारे। तो मेरे भाइयों, मैं भी और आप भी इस बात में सोचे कि हमें अपने घर जो हमारे प्रीमियर हो, बड़े आसान तरीके से खूबसूरत हो, और हर लम्हा हमें पे करना है, नमाज रोजा ये तो करने का है, लेकिन दूसरी साइड जो है झूठ ना हो, गइबत ना हो, हराम ना हो, किसी का जुल्म ना हो, किसी से ज्यादती ना हो, ये उससे बड़ा अमल है। मैं क्यों कह रहा हूँ बड़ा अमल है, हालांकि ये तो फर्ज है। आप कहेंगे क्यों आप कह जा रहे हैं बड़ा, कैसे बड़ा, इसलिए है आखिरत के हिसाब से कि नमाज आप पढ़ी है कबूल हो गई है, कोई गारंटी है, 70 कंडीशन है नमाज की, है या नहीं, और आपने झूठ छोड़ा उसी वक्त कबूल हो गया, झूठ का रिवॉर्ड उसी वक्त मिलता है, आपने झूठ कहा मैं तौबा करता हूँ झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह एकदम उसी वक्त रिवॉर्ड दे देता है, डायरेक्ट अमल हो गया अल्लाह के पास पहुंच गया। तो ये प्रेम ऐसा है भाई, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम तामल हो कि भाई तुम अमल करते जाओ और तुम्हें जन्नत का ठेकेदार बन जाओगे। यहां एक चीज नुकता आपको बताता चलो, एक हदीस से कंट्रास्ट नहीं है कि हदीस में ये आता है कि कोई शख्स भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, है या नहीं, इल्ला रहमतुल्लाह, सर अल्लाह की रहमत की। और यहां कुरान क्या कहता है जन्नत मिलेगी इसको, बीमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे अमल की वजह से मिलेगी। ये तो बड़ा कंट्रास्ट नजर आता है कुरान हदीस में, बात सुन जाए, लेकिन यह बहुत बड़ा इनाम है। गौर सुन लें आप कि कितना बड़ा अल्लाह पाक इनाम दे रहा है अपने इस इंश्योरेंस पर। क्या है अल्लाह का हदीस है, सही हदीस है, उलमा के नाम जानते हैं कि भाई कोई आदमी जन्नत में अपने अमाल की वजह से नहीं जाएगा सिवाय किसके, अल्लाह की। तो यहां वो कुरान क्या कहता है, बीमा कि तुम्हें जन्नत दी जाएगी तुम्हारे अमाल की वजह से। तो मेरे भाइयों, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दी अल्लाह पाक ने, बहुत बड़ी दी है। कहते ये तो औरों की बात है, जो मुझसे इंश्योर्ड हो गया ना, सही आदमी सही इंश्योर्ड हो गया और सही प्रेम उसने भेजा, अल्लाह ताला कहता है मैं तुम तामलून, ठीक है बिल्कुल हर चीज़ मेरी रहमत से होगी, लेकिन उस शख्स की जो अमल होंगे मैं दुनिया में ही अपनी रहमत की निगाह उसमें डाल दूंगा। हो गई रहमत, लेकिन वो दुनिया में ही कबूल हो गए उसके अमल। सुभान अल्लाह, अल्लाह कहता है मैं अपनी रहमत को दुनिया में ही कबूल कर लूंगा, जो भी अमल वो करेगा तो मेरी रहमत से वो कबूल हो जाएंगे वहीं पर, कोई फिक्र ही नहीं उसको करने की, जैसा चाहे तू अमल करता रहे मेरी रहमत तुझे कबूल कर लेगी उस वक्त। तो होगी तो रहमत की बात समझे, रिजेक्ट नहीं होंगे उसके अमल, रिजेक्ट नहीं होगा कोई अमल जो करेगा, सही प्रेम दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कोशिश के साथ लगा है, सही जिस तरह अल्लाह का हुक्म आता है सुबह से लेकर शाम तक, उठने के लेकर जिस काम पे खड़ा है, अब ये हुक्म इस तरह है, ये हुक्म इस तरह है, इसी तरह अदा किए जा रहे हैं उस हुक्म को बराबर, नमाज का टाइम नमाज, बाहर निकलना दूसरा हुक्म, हर वक्त हुक्म चलते हैं अल्लाह पाक, बिल्कुल हमारे पास तो हर लम्हे हुक्म है, हद तक ये कि मैं गाड़ी भी ड्राइव करता हूँ मेरा कोई जोर नहीं, उसमें भी हकाम है या नहीं है, हैं? ये सब आप आए हैं और यहाँ मेरी गाड़ी ठहरी है, आपने पीछे मेरी गाड़ी ठहरा दी, जुल्म है या नहीं जुल्म? वो भी मेरे साथ एक दफ़ा खड़े हैं वो जना बैठा बातें कर रहे हैं, किसी को बीमार आदमी है उसने निकलना है, कितना बड़ा जुल्म है कि तू पार्क कहाँ कर रहा है, पार्क करते हैं तूने ये नहीं सोचा कि किसी बाइक को मैं तकलीफ दे रहा हूँ, वो तेरी नमाज गई कहाँ, अपने से नमाज के बाद तलावत कर रहा है, जिक्र कर रहा है, बैठा है, आदमी को भेजा खुदा के वास्ते उसको बोलो एक आदमी मारे उसकी गाड़ी तो रोको खड़ा है, यार क्या हो गया साइड से निकाल लेते, यहाँ कुरान तलाम कुरान, हमको गलत काम तो नहीं, कुरान की तलावत कर रहे थे थोड़ी देर होगी, तो अंदाजा लगे ये सलाम है, हकूक है फिर गाड़ी ड्राइव करने के, और कितने हकूक थे गाड़ी, यहां से घर तक जाने भी आप जन्नत कमा सकते हैं अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें गाड़ी को। एक आदमी यार पिंक मारना शुरू कर दिया अपने खाम को, ज्यादती है या नहीं, किसी को फ्लैश करना शुरू कर दिया, किसी को नीचे करके और तुम आगे क्यों पीछे, उसको गाली देना शुरू कर दी, या स्पीड खाम का स्पीड को 30 का आपने 50 चलाना शुरू कर दी, ये सब कानून तोड़ रहे हैं नहीं तोड़ रहे हैं, बताएं हर चीज का हक है, हम सोच समझते हैं कि बस यही चीज इबादत है। मेरे भाइयों, یہ جو ہے یہ اس سے بڑی عبادات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سیکھنے ہم صوفی والوں کو صوفیوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ والوں کے پاس ہمیں کوئی نماز نماز سیکھنے نہیں جاتے, وہاں ہم تلاوتیں سیکھنے نہیں جاتے, یہاں ہم فقہ سیکھنے نہیں جاتے. ہم کیا سیکھنے جاتے ہیں؟ اخلاق سیکھنے جاتے ہیں. وہ خانقاہ ہی نہیں, وہ صوفی ہی نہیں جس کے پاس انسان کے اخلاق نہ نکلے, اخلاق نہ بنے جس کے, سمجھو اس نے تربیت ہی حاصل نہیں کی. رنگی رنگ صوفیوں کو جو چلتا ہے الحمدللہ, مشائخ کے پاس جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, وہ بہت با اخلاق انسان بن جاتا ہے, محنت کی کامیاب آ جاتی ہے. اور ہمیشہ میں قبض کرتا ہوں جب بھی اللہ تمہیں توفیق دے کسی شیخ پہ جانے کی, تو یہی نظریہ لے کے جاؤ کہ ہم نماز میں تو سب چلتی رہتی ہیں الحمدللہ, یہ سوچ کے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ باطنی کی جو ہماری بیماری ہیں ہمیشہ اس کا تجزیہ کرو, فارم بناؤ, فارم نام لکھو, بتاتے جاؤ کہ میرا جھوٹ نکل رہا ہے, غیبت نکل رہی ہے, فلاں نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اب میں اس پوزیشن میں ہوں, اور پھر کوشش کرتے چلے جاؤ. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ مجھے دکھائیں مجھ سے باتیں ہیں, وہ تو میں دعا کرتا ہوں دیکھ کے, دیکھنے کے بعد تو آپ خود احساس کریں اس چیز کو, اپنے میں آپ خود احساس کریں, مجھے دکھا رہے کیا فائدہ ہے کہ ہمیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے, حضرت کی اس میں کمپنی بیٹھے ہیں, یہ سیکھے ہیں, اخلاق ہمیں آئے, اتنی باتوں کو ہم سیکھے ہیں, آج ہماری مجلس تھی ہم گئے وہاں سے ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے. آج جو ہماری مجلس ہے روزی ہوتے ہفتے ہیں 10-12 مجلس ہو ہی جاتی ہیں, مطلب مجھے ہر مجلس میں کوئی ایک چیز لے کے جائیں. اگر میں دینے والا ہوں تو میں مجرم ہوں, میں تو ہمیشہ سوچ کے آتا ہوں کہ بھائی میرے شاگرد ہیں کوئی نئی چیز ان کو پہنچائی جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو, ان کی جو آج ان کے پوزیشن اللہ کے یہاں اس درجے میں بلند کرنا ہے ان کے, میں یہ سوچ کے آتا ہوں کہ ان کا درجہ بلند ہو. اور آپ نے نوٹ کیا اللہ ہر چیز دعا کو قبول کرتا ہے, جس مجلس میں آپ بیٹھیں گے ایک نئی بات نکلتی ہے, نکلتی ہے نہیں, یہ اللہ کا فضل ہے, آپ کی محنت ہے الحمدللہ, تو آپ کی وجہ سے مجھے بھی مل جاتے ہیں, بڑے تو آپ ہیں, میں تو خادم ہوں, آپ بخشائیں گے آپ ماشاء اللہ, آپ کے پیچھے میں چلنا ہے, آپ کی جوتیاں اٹھاؤں گا اللہ کے فضل سے, میں آپ کا مقام تو ہزار درجے بلند ہیں مجھ سے, اللہ کے آپ محبت کرنے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, میں تو ایک ڈیوٹی بیٹھا ہوں, میرے پاس تو کچھ عمل نہ کچھ بھی نہیں ہے, کل بھی آپ کے پیچھے ہوں اور آج بھی آپ کے پیچھے ہوں الحمدللہ, ابھی میں آپ کی جوتی اٹھا سکتا ہوں, مجھے کوئی بہر, میں تو ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں, میرے شیخ نے حکم دیا ہے بھیج تم یہ باتیں پہنچا رہا ہوں, لیکن میں تو بے انتہا کمزور ہوں آپ سے زیادہ, لاکھ درجے کروڑ درجے آپ مجھ سے اچھے ہیں الحمدللہ, میں تو کبھی نہیں سمجھتا یہ بات. تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بات ایسی پہنچے کہ الحمدللہ آپ کے درجے بلند ہوں تاکہ میرا کام بھی چلے. کل کو اللہ تعالیٰ کہے چلو اس نے محنت کی ہے, یہ ذلیل سے آدمی ہے, اس کو چلو ان کے صدقے نیک آدمی ہے, اس کے صدقے اس کے پیچھے لگا دو, میرا کام بھی بن جائے گا الحمدللہ, دل سے کہہ رہا ہوں بالکل اللہ کے فضل سے, کوئی بناوٹ نہیں کر رہا, حقیقی بات, آپ بلند ہوں گے مجھے خوشی ہوگی الحمدللہ, بے انتہا خوشی ہوگی. آج یہ شخص دیکھیں بھائی آتا تھا, اس نے محنت کی, اللہ نے اس کو قبول کیا, اللہ تعالیٰ اس کی جوتیوں کے صدقے مجھے بھی قبول کر رہا, مجھے بھی, میں تو بہت گناہ گار ہوں, دے رہا ہے, اب آپ بھی بڑھاپا گیا کدھر جاؤں گا, تو اس کے صدقے میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, مجھے فکر جی ہوتی ہے بھائی کس کے پیچھے لوگوں گا میں, الحمدللہ میں بالکل یہاں مسلط بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ کوئی نہیں, میں ڈرامہ نہیں کر رہا ہوں, یہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتا آدمی, جھوٹ سے منع آپ سے کر رہا ہوں, تو میرے لیے دعا کیا کریں آپ الحمدللہ, بھائی اس کے شخص کا یہ بیکار آدمی, اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے. لیکن ہر مجلس میں دعا کر کے آتا ہوں اللہ تعالیٰ ٹائم ویسٹ نہ ہو, یہ بچے بھی چاہ رہے آ رہے ہیں, کوئی نوکری چھوڑ کے آ رہا ہے, کوئی ٹیکسی چھوڑ کے آ رہا ہے, کوئی بچوں کو چھوڑ کے آ رہا ہے, میں اپنی کہانی لوں, کوئی ایسی بات کر کہ ان کے درجے بلند ہوں جب وہ نکلے اللہ کے, تو الحمدللہ اچھی معقول بات ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. قرآن کی بالکل آیت آپ کو سامنے پڑی ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, انشورنس کرائیں اللہ پاک سے, اور پریمیم کیا دینا ہے, عمل ہونا چاہیے, عمل کون سے ہیں, نماز بھی عمل ہے, اور دوسرا عمل کیا ہے, جھوٹ چھوڑنا بھی عمل ہے, اچھے عمل کرنے اور برائی کو چھوڑنا ہے, جو اس پہ چل رہا ہے تو سمجھو بالکل صحیح پریمیر جا رہا ہے اس کا, اس کے لیے حکم کیا ہے, قرآن نے کیا دیا کہ تمہیں وارثین بنا دیا جائے گا جنت کے, اور کہیں وعدہ نہیں کیا, اور کہیں وعدہ نہیں کیا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو توفیق دے.